हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 18। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र और शुभ वचनों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। शब्दों का अर्थ, विद्या विनय संपन्ने यानी वो जो जिसके अंदर विद्या भी हो और विनय। विद्या माना शिक्षण यानी ज्ञान, विनय अर्थात विनम्रता, संपन्ने यानी उससे युक्त, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी ब्राह्मण में, गवि अर्थात गाय में, हस्तिनी अर्थात हाथी में, शुनि चैव श्वपाके च शुनि अर्थात कुत्ते में, च एव निश्चय ही श्वपाके अर्थात कुत्ता बक्षी अर्थात चांडाल में, च पंडिताः समदर्शिना क्रमशः पंडिताः यानी ज्ञानी, समदर्शिना अर्थात समान दृष्टि से देखने वाले। अनुवाद, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि अर्थात समभाव से देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में कोई भेद नहीं मानता। यहाँ पर दो चीजें बताई हैं, एक योनि, योनियां कौन सी होती हैं, जैसे हम टोटल कितनी 84 लाख योनियां होती हैं जानवर की, पशु की, पक्षियों की, और जाति क्या होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो योनि और जातियों में कोई भेद नहीं डाल देखता है। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग जातियां होती हैं, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है, पवित्र रहता है, परंतु चांडाल कुत्ता खाता है। तो इस तरह उन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में फर्क होता है। अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थविहीन है, क्योंकि ये सब भौतिक शरीर से रिलेटेड है, इसलिए उसका कोई वास्तविकता नहीं, उसकी कोई मायने बेमायने हैं। क्योंकि विद्वान का क्या मतलब है, वो आध्यात्मिक दृष्टि रखता है, अर्थात जानता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वो जो अलग योनि में है या अलग जाति में है वो भी शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो आत्मा तो सबकी इक्वल है, तो वो किसी में भी भेद नहीं मानता। इसका कारण श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित रहता। अब समदृष्टि जो है वो दो प्रकार से होती है, एक तो आप ये समझो कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, ना, मेरे अंदर जैसी आत्मा है उसके अंदर भी ऐसी आत्मा है, मैं भी शरीर नहीं हूँ वो भी शरीर नहीं है, तो हम इक्वल हुए। और दूसरी समझ दृष्टि क्या होती है कि मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, उसके अंदर भी वही परमात्मा है। और अगर हम यही सोचते तो फिर कोई भी एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि सब एक जैसे हुए ना। फिर तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो विद्या विनय होता है, जो ज्ञानवान होता है और जिसके अंदर विनम्रता होती है, वो किसी में भी भेदभाव नहीं देखता है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है, यही ज्ञान कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी परमात्मा है, वो भी आत्मा नहीं है, उसके अंदर भी परमात्मा है, तो सब इक्वल है, तो यही वास्तविक ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान ने ये नहीं कहा कि उस प्राणी के अंदर नहीं होता हूँ, छोटी योनियों के अंदर नहीं होता हूँ, कम जातियों के अंदर नहीं होता हूँ। भगवान ने कहा सर्वभूतानां, मैं परमात्मा के रूप में समस्त प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। तो भगवान यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवों की समस्त परिस्थितियों में अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक नहीं होते, है ना, अगर चांडाल और ब्राह्मण को देखे तो उनके शरीरों में बहुत अंतर होता है। वो बहुत पवित्र होते हैं ब्राह्मण, और अपवित्र योनि अपवित्र जाति होती चांडाल की, परंतु भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपवित्र चांडालों के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं तो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर तो प्रकृति के गुणों से द्वारा उत्पन्न होता है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले। अब देखो शरीर के अंदर प्रकृति के गुण हैं, उसी के द्वारा ये शरीर परिवर्तित होता रहता है। जीव की इच्छाएं हैं, उसके अनुसार उसको दूसरा शरीर मिलता है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा और परमात्मा है वो सदैव समान रूप से आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु परमात्मा तथा आत्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मिक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होती होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्री प्रभुपाद जी बोलते भले ही सब आत्मा परमात्मा सबके हृदय में होता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की यह समानता मात्रात्मिक दृष्टि से उन्हें समान, यानी उनके अंदर क्वालिटीज वही होती है आत्मा के अंदर भी परमात्मा के अंदर। वो आध्यात्मिक तो है लेकिन फिर भी क्वांटिटी सेम नहीं होती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल आत्मा है वो एक ही शरीर में उपस्थित रहता है, उसे सिर्फ एक ही शरीर का ज्ञान होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है, है ना, उसको समस्त शरीरों का ज्ञान होता है। तो परमात्मा का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। वास्तव में आत्मा भी शरीर का स्वामी है, परमात्मा भी, लेकिन वो छोटा स्वामी है क्योंकि वो सिर्फ एक ही शरीर के विषय में जान सकता है। लेकिन विभू है परमात्मा जो कि प्रत्येक शरीरों के विषय में जानता है, उनके भूत भविष्य वर्तमान के विषय में जानता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को उसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदृष्टि होता है। वो जानता है कि उसके अंदर भी वही परमात्मा है, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, मेरी आत्मा इस शरीर के अंदर इसलिए है क्योंकि उसने ऐसे कार्य किए थे, परंतु उसके आत्मा ने उसने दूसरे कार्य किए थे इसलिए उसको दूसरा शरीर मिला है, तो उसको सही तरह से जानता है। और फिर वो समदृष्टि होता है क्योंकि वो इस भौतिक शरीर को देखता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये प्रकृति की देन है, आज दूसरा है तो कल दूसरा हो जाएगा, परंतु आत्मा तो सेम ही है। कि आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंदमय है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में सेम क्वालिटीज है, क्या क्वालिटीज हैं? देखो, आत्मा की और परमात्मा की क्वालिटीज क्या है? चेतन है, यानी उनके अंदर चेतना है, वो जान सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो शाश्वत है, यानी पहले से शुरू से हैं और अंत तक रहेंगे। कभी भी आत्मा और परमात्मा कभी फना नहीं होंगे, कभी उनका विनाश नहीं होगा, और वो आनंदमय है। अत्यंत ही सुंदर ये शब्द है कि आत्मा और परमात्मा सदैव आनंदमय है। अब आत्मा जब भौतिक प्रकृति में आकर अज्ञान के द्वारा फंस जाती है, तो उसे इस भौतिक शरीर के द्वारा अनुभव करना पड़ता है दुख और सुख, लेकिन ये दुख और सुख आत्मा को टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आनंदमय है, क्योंकि वो भगवान का एक अंश है, भगवान स्वयं आनंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आत्मा भी आनंदमय, ये आनंद की सीकर हमेशा आनंद को खोजती रहती है, क्योंकि इस भौतिक संसार में आ गई, लेकिन वास्तविकता आत्मा की भी वही है कि वो भी आनंदमय है, शाश्वत है और चेतन है। जिस तरह शरीर में आने के बाद शरीर मृत्यु हो जाता है, उस आत्मा तो वही रहती है, उसी तरह इस शरीर के कारण ही उसे असुख यानी दुख उसको प्राप्त होता है, टेंशन वगैरह, लेकिन जैसे शरीर समाप्त हो जाएगा, शरीर का ये बोध समाप्त हो जाएगा, तो वो ये जानने लगेगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो शरीर से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। अपना इस आसक्ति को जैसे ही समाप्त करेगी, तो वो फिर से अपनी वास्तविक आनंदमय स्थिति में पहुंच जाएगी। किंतु अंतर इतना, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों के अंदर सचेतन रहता है। आत्मा को सिर्फ अपने शरीर के विषय में और परमात्मा को समस्त शरीरों के विषय में ज्ञान होता है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा जो है वो कभी भी भेदभाव नहीं करते कि इतना गंदा कीड़ा गटर के अंदर रहता है, मैं उसके साथ क्यों रहूं? ये मॉस्किटो है, ये मच्छर है, ये खटमल है, मैं उसके अंदर क्यों रहूं? मैं परमात्मा हूँ, मेरा इतना स्टेटस है, मैं भगवान हूँ, मैं क्यों किसी गंदे कीड़े के अंदर या फिर ना किसी ऐसी योनि के अंदर क्यों रहूं? मैं चांडाल के अंदर क्यों रहूं? मैं कुत्ते के अंदर, सुअर के अंदर क्यों रहूं? भगवान इतने कृपालु है, भगवान के अंदर इतनी करुणा है कि जीव भले ही बारंबार उसको भूल जाने के कारण कैसी भी योनि में चला जाए, लेकिन भगवान अपने बच्चे को कभी नहीं भूलते। वे हर हाल में हर जगह पर उनके साथ रहते हैं, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते, और सदैव चैत्य गुरु के तौर पर हमेशा उस जीव को ये याद दिलाते रहते हैं कि तुम्हारा इस भौतिक शरीर से कोई रिलेशन नहीं है, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे पास आने के बाद ही आनंद मिलेगा। तो इसके लिए हृदय के अंदर वो परमात्मा बनकर बैठे हैं, और भौतिक प्रकृति में गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, कभी तो स्वयं आ जाते हैं अपने गोलोक को छोड़कर, कि किसी तरह से ये जीव जो भटक रहा है, मुझसे अपने संबंध को छोड़ चुका है, तोड़ चुका है, मुझे याद नहीं करता, को किसी तरह से मैं उसे वापस से अपनी यादगिरी कराऊं और उसे अपने धाम में ले जाने के लिए प्रेरित करूं। भगवान बहुत कृपालु है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్ట స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందే అహం శ్రీగురుః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణరఘునాథం పితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధా కృష్ణపాదా సహగణలలిత శ్రీవిశాఖాన్వితాశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపిక కాంత శ్రీరాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్తకాంచనం గారంగే శ్రీరాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతదేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే. వంశాకల్పతరు భయశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైతం గదాధారం శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీమద్ భగవద్గీత మాతకి జయ హో. భగవాన్ అత్యంత సుందర బతా రహే హై కి జిస్కో వాస్తవిక మే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన్ ప్రాప్త హో జాతా హై. పహలే భగవాన్ నే కహా కి జ్ఞాన్ ప్రాప్త కర్నే కే బాద్ శ్లోక్ నంబర్ 16 మే బతాయా, జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం యేషాం నాశితం ఆత్మన. యానీ జ్ఞాన్ జబ్ ప్రాప్త హో జాయేగా తో అవిద్యా కా అజ్ఞాన్ కా నాశ హో జాయేగా. और तेषां आदित्य वैज्ञानं प्रकाशयति तत्परं. और ज्ञान सूर्य के समान हर एक चीज को प्रकाशित कर देगा. और ज्ञान प्राप्त करने के बाद फल क्या मिलेगा, भगवान ने बताया श्लोक नंबर 17 में. तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्यः గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్దూత కల్మశ. ఏక్ తో ఆప్కే సమస్త కల్మశ ధుల్ జాయేంగే జ్ఞాన్ సే, ఔర్ దూసరా ఆప్ కభీ భీ దుబారా ఇస్ సంసార్ మే ఆనా నహీ పడేగా, హనా. యబ్ జబ్ ఆప్ బుద్ధి సే మన్ సే ఔర్ నిష్ఠా కే సాత్ జ్ఞాన్ కో అప్లై కరోగే తో ఫిర్ ఆప్ భగవాన్ కే పాస్ చలే జాఓగే, దుబారా ఇస్ సంసార్ మే ఆనా నహీ పడేగా. ఔర్ ఫిర్ జ్ఞాన్ జో హై వో ఆప్కే సమస్త అపరాధోం కో సాఫ్ కర్ దేగా. తో ఫిర్ అర్జున్ నే పూచా కే చలో ఠీక్ హై, మే మాన్తా హూం కే భగవాన్ కే పాస్ జాయేంగే, లేకిన్ సంసార్ మే వో జ్ఞానీ రహతా కైసే, యానీ కి ఆమ్ సాధారణ వ్యక్తి మే ఔర్ జ్ఞానీ మే క్యా అంతర్ హోతా హై, జబ్ హమ్ దేఖ్తే కైసే హై ఉస్కో, హమే పతా కైసే చల్తా హై కి వో జ్ఞానీ హై. तो भगवान बताते हैं विद्या विनय संपन्न. वास्तव में जिसके पास विद्या आ जाती है, जिसके पास ज्ञान आ जाता है, तो उसके अंदर एक दूसरा लक्षण, बहुत ही एक सुंदर लक्षण भगवान बता रहे हैं, जो बहुत ही विलक्षण दिख रहा है मुझे. क्योंकि यह साधारणतया हम देखते हैं जिसके अंदर विद्या आ जाती है उसके अंदर घमंड आ जाता है, है ना. कोई भी चीज जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, साधारण सा कोई भौतिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, तो अगर किसी को स्पीकिंग अच्छी आती, खाली देखो हम थोड़ा सा भी देखें, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे से ग्रेट तो कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, है ना. और वो सोचेगा और अपने आप की कोई भी क्वालिटी, कोई भी ज्ञान जो उसने हासिल किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसका प्रदर्शन करेगा और समाज में अपने आप को ग्रेट, अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। कोई भी ज्ञान हो, इवन छोटे से छोटी चीज भी उसको आ रही होगी तो समझेगा भाई मेरे से बेहतर तो कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं विद्या तो वास्तविक ज्ञान तो वो है जो आपको विनम्र बनाता है। यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद विनम्रता प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तविक ज्ञान तो विनम्रता है कि मैं दास हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है, जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा है, मुझे कुछ नहीं आता। ये है वास्तविक ज्ञान। जिसके अंदर विनम्रता नहीं है समझो वो ज्ञानी नहीं है। और जब वो वाकई में ज्ञानी हो जाता है, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके साथ साथ विनम्रता भी हो जाती है, फिर वो क्या करता है, ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनि चाहे वह स्वपाकेच पंडिता। पंडिता वापिस से ज्ञानी आए यहाँ पर। पंडिता का मतलब होता है जो बहुत बहुत ज्ञान जिसको हो जाता है, वो समदृष्टि हो जाता है। उसी से क्यों, क्योंकि समदृष्टि हो जाता है उसे वास्तव में पंडित हो जाता है। भगवान ने पंडित लफ्ज पहले भी बोला है ना कि 2.11 में, याद है भगवान ने कहा अशोच्यान अन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसि गतासु नागतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन को बोला तुम बातें तो बड़ी पंडितों वाली कर रहे हो, है ना, ज्ञान जान रहे हो, लेकिन जो वास्तव में पंडित होते हैं वो तो ना जीवित के लिए और ना ही मृतक के लिए शोक नहीं करते। तुम तो उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं। यानी कि भगवान पहले भी बता चुके 11 में कि पंडित वो होता है जो शरीर से, शरीर को कुछ वैल्यू नहीं देता, है ना, जो शरीर शरीर को कुछ महत्व नहीं देता। तो फिर आज भगवान कहते हैं पंडिता समदर्शिना, कि जो पंडित होते हैं वो एक दूसरों के जाति या योनि को केंद्रित बनाकर उनको ऊंचा नीचा नहीं करते, वो समदृष्टि होते हैं। अब यहाँ पर योनियों के विषय में बताया गया, ब्राह्मणे, यहाँ पर योनिया है, एक तो ब्राह्मण है और श्वपाखे यानी चांडाल, ये दोनों जातियां हैं। और योनियों में पशु योनि के विषय में बताया गवि हस्तिनी शुनि, यानी गवि यानी गाय, हस्तिनी यानी हाथी और शुनि अर्थात कुत्ता। अब देखो वास्तव में क्या होता है, जितने भी पशु होते हैं वो तमोगुण में है। याद है हमने 16वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि जो तमोगुण में होते हैं वो पशु योनि को प्राप्त करते हैं। तो ये सारे योनियां जो, ये सारे जो पशु हैं वो तमोगुण में है, लेकिन तमोगुण में भी विभाग है। कोई सात्विक तमोगुण है, कोई राजसिक तमोगुण है, कोई तामसिक तमोगुण है। अभी जैसे गाय का शरीर भी पशु ही है ना, भले वो पुण्यवान शरीर है तो, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक चेतना में डायरेक्ट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए वो तमोगुण है लेकिन सात्विक तमोगुण है। और जैसे दूसरा कुत्ता, यहाँ पर बताया कुत्ता जो है वो तमोगुण है और तामसिक तमोगुण है। चांडाल जो है वो योनी है, तमोगुणी योनी है, क्योंकि उसको ऐसा तमोगुणी आहार खाने के लिए यहाँ पर रहता है, मगर कोई ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पर जो विद्या विनय संपन्न होते हैं, जिनके अंदर विद्या होती है और विनम्रता होती है, वो क्या होते हैं, पंडिता समदर्शिना। मतलब जो वाकई में पंडित होता है, जो वाकई में जानता है, ज्ञान हासिल कर लिया है जिसने, वो सब जीवों को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो भौतिक शरीर के आधार पर जीव को नहीं देखता, क्योंकि यह शरीर तो नाशवान है। भगवान ने कहा वासांसि जीवानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपणानि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। फिर वो शरीर तो कभी भी वैल्यूएबल नहीं हुआ, तो फिर जो वास्तव में ज्ञानी है वो शरीर को महत्व नहीं देता, बल्कि क्या देखता है, उसके अंदर भी वही आत्मा है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है। तो भौतिक दृष्टि पर ये शारीरिक भेद होता है, क्या क्या भेद होता है कि वो सुंदर है, वो कुरूप है, वो काला है, गोरा है, वो कुत्ता है, वो जानवर है, वो मनुष्य है, या फिर ये छोटा है, बड़ा है, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है। लेकिन ये सब भौतिक स्तर पर होते हैं। आध्यात्मिक स्तर पे केवल एक ही दृष्टि होती है कि हम सब आत्मा हैं और हम भगवान के दास हैं। किसी कारण से अपराध हो गया है जिसके कारण हमें ये आवरण प्राप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में हम ये नहीं है जो हम दिख रहे हैं। ये शरीर हमारी भौतिक पहचान है, लेकिन जब तक हम भौतिक स्तर पर रहेंगे तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। फिर क्या होता है, झगड़े होते हैं, है ना, फिर फसाद होते हैं, फिर एक दूसरे को हीन भाव से देखते हैं कि वो ऐसा है, हम ऐसे हैं, वो ऐसे कर रहा है। देखो वो सब शरीर ही कर रहा है, वो शरीर भी पिछले कर्मों के अनुसार आज हमें ये सब दिख रहा है। मतलब जो हमने पिछले इनके साथ हम लोगों ने जो कार्य किए हैं उन कर्मों की सजा, यानी कर्मों की प्रतिक्रिया मिल रही है हमें, इसीलिए हम दूसरों को भला बुरा सोचते हैं। लेकिन जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि मैं आत्मा, मेरा संबंध कृष्ण से है और मैंने ये अपराध किया होगा, इसी के कारण मुझे यह सजा मिल रही है, उस सजा को हृदय से एक्सेप्ट करूं और फिर मैं वापस से अपने वास्तविक जीवन को प्राप्त करूं। यदि ये ज्ञान हो जाएगा ना, फिर किसी से द्वेष भाव नहीं होगा। आज हम हर किसी से द्वेष रख रहे हैं ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, वो कैसे, ये सब होगा नहीं फिर, क्योंकि पंडिता समदर्शिनः, पंडित जो है वो सबको इक्वल मानता है कि वो और भी जो योनियां, जो जातियां निम्नतर होती है उनके लिए तो और भी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मनुष्य है, जो सोफिस्टिकेटेड है, जिनको गुरु साधु और शास्त्र का सानिध्य प्राप्त है, वो तो आज नहीं तो कल प्राप्त कर ही लेंगे कृष्ण को। लेकिन ये योनिया जो कि इतनी निम्न योनिया है, तमोगुण में भी तमोगुणी है, वो पता नहीं कब उन पे भगवान कृपा करेंगे। ये चांडाल है जो भगवान के विषय में जानते नहीं है, वो पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा वो भगवान उनके लिए, तो और भी वो हृदय से प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि कैसे हम इनके जीवन को सफल कर सकें, कैसे हम इनके ऊपर कृपा कर सकें। क्योंकि एक वैष्णव का एक ही कार्य होता है कि वो दूसरों की पीड़ को जानता है, दूसरों के दुख को, दूसरों के कष्टों को जानता है। ये नहीं कि उसे आज नई ड्रेस नहीं मिली तो ये कष्ट को जानो, या वो आज घूमने नहीं जा सका तो ये कष्ट, उसने आज सिनेमा, ये कष्ट तो वो केवल भौतिक उसके विचारधारा के अनुसार उसे प्राप्त हो रहे हैं। वास्तविक कष्ट तो ये है जीव आत्मा का कि उसे भगवान से दूर कर दिया गया, और भगवान से दूर रहकर कोई भी जीव आत्मा संतुष्ट रह नहीं सकती। मैं आपको आज एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ जिसमें हम देखेंगे कि जो पंडित होता है वो किस तरह से समदृष्टि होता है। महाराज शिबी, ये बहुत ही, ये महाराज थे, राजा थे, लेकिन अत्यंत ही शुद्ध यानी ब्रह्म ऋषि थे। वो भगवान के सच्चे भक्त थे, विद्या विनय संपन्न, ज्ञान और विनम्रता से संपन्न थे। एक बार एक कबूतर उनके पास आया, वो कबूतर बहुत ही दुखी था। कबूतर जिसे आप जानते हो कि इसको हम बहुत ही निम्न पशु ना समझते हैं, पिजियन, कोई उसको ऐसे नहीं सोचते कि हम कैसे इसकी रक्षा करें कैसे। वो कबूतर बहुत घबराया हुआ था और कहने लगा, मेरे पीछे चील पड़ी है, वो चील मुझे खा जाएगी, आप कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तो महाराज ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा, भगवान की कृपा से मैं आपको अवश्य उस चील से बचाऊंगा। और फिर महाराज चील को कहने लगे, तुम इस कबूतर को क्यों खाना चाहते हो, कृपया उसको कष्ट मत दो। चील ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, विद्या विनय संपन्न है, आपको सबकी रक्षा करनी चाहिए। ये कबूतर मेरा आहार है, आप उसकी रक्षा कर रहे हैं परंतु मेरे बारे में नहीं सोचते। आप मेरे बारे में भी सोचो ना कि अगर मैं उसे नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो राजा ने कहा, अच्छी बात है, कबूतर के वजन जितना कबूतर का वजन है उसको हम उतना ही मैं अपने शरीर का मांस तुम्हें दूंगा, तुम उसे खाना लेकिन कबूतर को नहीं खाना। चीन ने कहा, ठीक है, मुझे तो मांस खाना ही है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने ही जिस्म का अपने शरीर का मांस मुझे दे दो। एक तराजू मंगाया गया और एक साइड पर कबूतर को रखा गया, दूसरे साइड पर जो राजा था वो अपने गोश्त को काट काट के रखने लगा। लेकिन विडंबना ये हुई कि राजा ने अपने जिस्म के एक एक हिस्से का गोश्त काट काट के रखने लगा, परंतु कबूतर का वजन ऊपर हो ही नहीं रहा था, मतलब कबूतर फिर भी भारी था। तो अंत में राजा ने सोचा कि अब कबूतर तो इतना भारी है, मैं कैसे करता हूँ कि मैं खुद ही बैठ जाता हूँ उस तराजू के ऊपर। फिर राजा स्वयं ही तराजू के ऊपर बैठ गए, फिर देखा कि दोनों का वजन इक्वल हो गया, दोनों का वजन बराबर हो गया। उस समय राजा की नेत्रों में खुशी के आंसू आने लगे और भगवान को ये प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपकी कितनी कृपा है, मेरा सौभाग्य है कि मेरा ये शरीर किसी जीव के काम आ सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण, आप बहुत कृपालु हैं। और फिर चील को कहा कि देख लो, मेरा वजन पूरा बराबर आया है और तुम खा सकते हो मुझे। उस समय चील और कबूतर दोनों ही देवता बन गए और देवता की योनि में आकर उस राजा को कहने लगे कि हम आपकी कृपा को देखने के लिए आए थे, हम तो केवल ये देखने के लिए आए थे कि आप कितना समदृष्टि हो, कितना अच्छा, और हम आपके द्वारा ये संसार को दिखाना चाहते थे कि वास्तव में पंडित किस तरह से समदृष्टि होते हैं और सबके लिए सबके ऊपर उपकार करते हैं। ये तो महाराजा शिवी थे, परंतु हमें हमारे मन में ऐसा आ रहा होगा कि हम तो ऐसा कभी नहीं कर सकते, हमारे अंदर तो ये गुण कभी भी नहीं आ सकता, तो क्या हम वास्तविक यानी वास्तविक विद्या विनय कभी नहीं बन सकते। हमारे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं चैतन्य महाप्रभु। वो कहते हैं कि इस स्तर पर आने के लिए हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना पड़ेगा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो जीवों के हृदय से समस्त अपराधों और कलमशों को दूर करके समस्त प्राणियों को समदृष्टि दिखाता है, क्योंकि ये अपराध ही तो है जिनके कारण हम दूसरों को छोटा बड़ा, खराब, अच्छा इस तरह से समझते हैं। लेकिन जब हृदय के अंदर कोई कलमश नहीं रहेगा, समस्त अपराध दूर हो जाएंगे, तो हमें केवल अपना लक्ष्य दिखेगा, है ना, केवल अपना लक्ष्य कि मैं शरीर से, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, मुझे भगवान के पास जाना है। फिर किसी से कोई भेद नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं है, फिर समदृष्टि बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु एक बार वृंदावन जा रहे थे पुरी से, और उनके साथ उनके दो सेवक थे, एक बलभद्र भट्टाचार्य थे और दूसरे स्वरूप दामोदर। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो प्रेम से भरे हुए और उनका हृदय इतना प्रेम से पूर्ण था, हृदय में बहुत प्रसन्न थे कि अब वृंदावन जाने वाला हूँ, मैं वृंदावन के दर्शन करूंगा। जंगल से गुजरते हुए वो प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर, जंगली हाथी, शेर, चीता, बिच्छू, कोबरा, स्नेक सब वहां पर एकत्रित। जब बलभद्र भट्टाचार्य ने उनको देखा
तो बहुत डर गए, बोला अभी यहाँ पर तो इतने सारे जानवर हैं, परंतु महाप्रभु तो रुक ही नहीं रहे हैं। महाप्रभु तो भाव आवेश में सदैव कंटिन्यूअस भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं, और ये उच्चारण इतना सुंदर था कि सारे जितने भी जंगली जानवर थे, जब उन्होंने भगवान के इस पवित्र नाम को सुना, तो वो भी महाप्रभु के साथ उस महा आनंद में सहयोगी होने लगे। वो भी अपनी अपनी बोली में भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु उनको बोले थे हाँ चैंट चैंट चैंट, और भी जोर से महामंत्र का जप करो। वो डांस कर रहे, महाप्रभु उनके साथ डांस कर रहे थे, बहुत बहुत आनंद में सारे जंगली जानवर नाच रहे हैं और भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, एक चीता सो रहा था, तो बलभद्र भट्टाचार्य ने सोचा कि अगर महाप्रभु का उसके ऊपर मतलब टच हो गया, वो सो रहा है, अगर टच हो गया ना महाप्रभु का चरण उनके ऊपर, फिर तो ये जरूर कुछ न कुछ हम लोग वो खा जाएगा। फिर महाप्रभु ने जानबूझकर अपने चरण को उनके सर पर मारा, और फिर वो चीता जाग कर ऐसे देखने लगा, गुर्राने लगा। महाप्रभु बोले कीर्तन करो, चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीता अपने एक हाथ ऊपर उठा करके जोर जोर से कहने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके नेत्रों से भगवान के प्रेम के अश्रु बहने लगे, और वो प्रेम के भाव से नृत्य करने लगा, और नृत्य कर करके जोर जोर से महामंत्र का जप करने लगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आज के हम जैसे प्राणियों से जो भगवान के नाम में कोई आकर्षण नहीं रखते हैं, उनसे बेहतर, उनसे भले तो वो जानवर हैं। उसके बाद जंगल में महाप्रभु आगे जा रहे थे, और जंगल में एक नदी बह रही थी। महाप्रभु ने बहुत 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 आनंदमय कीर्तन किया उन जंगली जानवरों के साथ, और फिर स्नान करके गायत्री करने लगे। उस समय बहुत ही भयंकर हाथी का झुंड जो है वो वहां पर पानी पीने के लिए आए। वास्तव में भक्तों, जो जंगली शेर और चीता होते ना, वो तो एक दो लोग को मारकर वो भाग जाए, लेकिन हाथी अगर कहीं पर जंगली हाथी घुस जाते ना, वो इतना झुंड होता है, और फिर वो सारा का सारा जो भी वातावरण होता है उसको तहस नहस कर देते हैं। जब बलभद्र भट्टाचार्य ने उन हाथियों को देखा, वो बहुत डरने लगा कि अब न जाने क्या होगा। महाप्रभु ने क्या किया, उनके ऊपर ना ऐसे पानी उठाया वहां से, और पानी को जोर जोर से उनके ऊपर फेंकने लगा। ऐसे दूर थे, और जैसे जिस भी हाथी के ऊपर थोड़ा सा भी एक छींटा भी पानी का पड़ने लगा, तो फिर वो भी एक बूंद भी जिसके ऊपर आ जाती, तो बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना जोर जोर से, और एक समय आया कि जितना हाथियों का ये पूरा जो झुंड था, वो जोर जोर से अपनी सूंड को उठा के, अपने हाथों को उठा के, और डांस करते हुए नृत्य करते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे, चिल्लाने लगे, और उस असीम आनंद को प्राप्त करने लगे जो कृष्ण प्रेम में प्राप्त होता है। महाप्रभु कहते हैं, आज के इन जीवित प्राणी जो मनुष्य कहलाते हैं, उनसे तो वो हाथी अच्छे हैं जो भगवान के प्रेम में रो रहे थे, जमीन पर लोटपोट हो रहे थे, भगवान के प्रेम का आनंद लूट रहे थे। इन जीवों की को परम सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वो सब महाप्रभु के पीछे पीछे, उनकी सुंदरता के पीछे पीछे आ रहे थे, और अचानक क्या हुआ, एक हिरण का झुंड आने लगा। हिरण बहुत सारे थे, और वो भी महाप्रभु की सुंदरता को देखकर, उनके महाप्रभु ने जो गले में फूलों की माला पहनी हुई थी और महाप्रभु की शरीर से इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी, तो हिरण को ऐसा लगा कस्तूरी की सुगंध आ रही है। तो वो महाप्रभु के साथ साथ पीछे पीछे चलने लगी और महामंत्र के जप के साथ साथ नृत्य करने लगी। फिर जब वो हिरण वहां से जा रहे थे तो उसके साथ साथ सात चीते एक साथ निकले। अभी सात हम सब जानते हैं कि हिरण और चीता आपस में भयंकर शत्रु हैं। हिरण सदैव चीते से भयभीत होता है, परंतु उस दिन चीता और हिरण वो एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे थे बल्कि भगवान की सुंदरता की ओर आकर्षित हो रहे थे। वो साथ साथ में भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। महाप्रभु हाथ ऊपर कर करके महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और वो सब चीता शेर हाथी और ये हिरण सब मिलकर भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे थे। यानी कि किसी के मन में भाव ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा योनि का पशु है। सबको एक केवल सबका केंद्र बिंदु क्या बनाया हुआ था, महाप्रभु को। जब हम भगवान को केंद्र बनाते हैं तब हमें कोई दुश्मन नहीं लगता, तब हमें कोई खराब नहीं लगता, तब हमें कोई भी निम्न योनि नहीं लगती। और हिरण और सीता सब मिलकर महामंत्र का ना केवल जप करने लगे, ना केवल नृत्य करने लगे, परंतु एक दूसरे से सारे जो पशु थे वो भी प्रेम कर रहे थे। वो उनको ऐसा लग रहा था वो कितना अच्छा नाम जप कर रहा है, तो एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। जो शत्रु थे वो प्रेम से एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, एक दूसरे का चुंबन कर रहे थे। हम देखते हैं दुनिया में कितनी हिंसा है, सब एक दूसरे से, हर किसी के हृदय में दूसरे के लिए बैर भाव है, बस ये सोचता है कि मैं कैसे उसको दुखी करूं। लेकिन ये भगवान का पवित्र नाम जब हम उच्चारण करते हैं तो हृदय से समस्त मलिनता दूर हो जाती है। भगवान के नाम से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। महाप्रभु ने प्रसन्न होते हुए जोर से कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समस्त जो ये पशु थे उनके हृदय से बैर भाव समाप्त हो गया। तो क्या ये महामंत्र, ये भगवान का पवित्र नाम हमारे हृदय को पवित्र नहीं करेगा? वो कर सकेगा, लेकिन हमें भी तो उसी चाह से, उसी महाप्रभु के आदेश को सामने रखते हुए उसी प्रेम से इस महामंत्र का जप करना है। उसके बाद महाप्रभु आगे चले और एक गांव में पहुंचे। वहां उस गांव में मतलब जंगल ही था, जंगल का ही एक पोर्शन बना हुआ था। अब वहां पर कुछ लोग रह रहे थे। महाप्रभु ने सोचा ये लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। वास्तव में वो लोग इतने असभ्य थे, इतने असभ्य मतलब वो इतने खराब थे कि लोगों ने उनको गांव और शहर से निकाल दिया था, इसलिए वो आके जंगल में रह रहे थे। तो वो बहुत अपराधी थे, उनके जीवन का कोई स्तर भी सही नहीं था। जब उन्होंने महाप्रभु को देखा तो महाप्रभु को देखते हुए महाप्रभु प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे थे और नाच रहे थे, गा रहे थे। केवल महाप्रभु के दर्शन करने से, उस नाम का उच्चारण श्रवण करने से उनके हृदय जो है वो पवित्र हो गया। और फिर वो क्या करने लगे, महाप्रभु के लिए जो 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 सामग्री उनके पास थी ना, जैसे किसी के पास फल जड़ी बूटी या जो कुछ भी था, वो सब महाप्रभु के लिए भेंट लेकर आने लगे। मगर महाप्रभु ने कहा मैं कोई भिक्षुक नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बोला लेकिन हम आपको अपनी खुशी से दे रहे हैं, हमारा दिल कर रहा है कि हम आपको कुछ दें। तो महाप्रभु ने कहा यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझ पर इतनी कृपा करो, मुझे भगवान का पवित्र नाम श्रवण करा दो। वास्तव में भक्तों, महाप्रभु हमसे केवल एक ही भेंट चाहते हैं कि हम उन्हें भगवान का पवित्र नाम श्रवण कराएं। तो वो भी भगवान के साथ मिलकर हाथ उठाकर ऊपर नृत्य करके, वो भी शुद्ध हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। महाप्रभु कहते हैं कि आज के सिविलाइज सिटीज के जो बहुत बहुत ज्ञानी, जो बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, उनसे ज्यादा बेहतर तो ये असभ्य प्राणी है जो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में आकर ये तरीका बताया कि किस तरह से आप अपने आप को पवित्र कर सकते हो, क्योंकि महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान है, उनके अंदर ये शक्ति थी। तो उन्होंने जंगली जानवरों को, जंगली जानवर जो एक दूसरे से इतना मेल भाव रखते थे, असभ्य लोगों को भी भगवान के पवित्र नाम पे नचा लिया। तो भले हमारे अंदर वो पावर नहीं है, लेकिन ये भगवान का नाम तो वही है ना, उसके अंदर तो उतना ही पावर है। महाप्रभु कहते हैं नाम ना नाम नाम कारी बहुदा निज सर्व शक्ति ही तत्र अर्पिता। भगवान ने अपनी समस्त शक्ति उस पवित्र नाम के अंदर डाल दी है। हमारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि ये महामंत्र सबका कल्याण कर सकता है, सबका हृदय पवित्र कर सकता है। वास्तव में भले ही हम इतने जंगली जानवरों को नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो हम भगवान महाप्रभु और गुरु और गौरंग को प्रसन्न करने के लिए कर सके। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि भले जानवरों को ना, लेकिन स्वयं तो भगवान के पवित्र नाम का जप करके उसके नाम के अंदर डूब कर भगवान के पवित्र नाम से अपने हृदय को पवित्र कर सकते हैं। दूसरे मानवों को जो सभ्य हैं, जो हमारी बात समझ सकते, उनको तो भगवान का नाम दे सकते हैं। महाप्रभु के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो जंगल की घास के एक एक तिनके से भगवान का नाम ले उच्चारण करवाते थे। हमारे लिए इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ये भगवान का पवित्र नाम महाप्रभु का आशीर्वाद है हमारे लिए। हम जितनी उसके अंदर श्रद्धा रखेंगे, उतना ही वो प्रकाशित होगा, क्योंकि नाम अभिन्नत्वान नाम नामिनो, ये चैतन्य रस विग्रह है। इसके अंदर चेतना है, इसके अंदर समझ, ये नाम जो है वो समझता है कि जीव किस भाव से मेरा उच्चारण कर रहा है, तो वो नाम जो है वो उसी मात्रा में आपके सामने प्रकाशित होता है। जब हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं तो वो हमें शुद्ध कर देता है और हमें भगवान का पवित्र प्रेम प्राप्त कराता है, हृदय में समस्त दुखों कलमशों और तकलीफों को खत्म कराता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी हमेशा क्या कहते हैं, चेंज एंड बी हैप्पी। आपके संतुष्ट होने का, आपके खुश होने का एक ही तरीका है कि आपको भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वो शरीर को आत्मा के स्तर पर लेकर आ जाता है और सब प्राणियों के लिए प्रेम प्रदान कराता है। ये सबसे बड़ा वरदान है हमारे लिए। हम सब जीवों को भगवान के पवित्र नाम की महिमा और भगवान का पवित्र नाम लेने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। इसी से समस्त बुराइयां समाप्त होंगी और इसी से हम गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकेंगे। यही वास्तविक विद्या विनय संपन्न, इसी के द्वारा हम समस्त प्राणियों के भेद भाव को मिटा सकते हैं, सब समस्त प्राणियों के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न करा सकते हैं। तो आज भगवान ने हमें ये बताया कि किस तरह से ये भगवान का पवित्र नाम समस्त जातियों और समस्त योनियों के भेद को खत्म करता है। कृपया मेरे साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं गुरु और गौरंग को प्रसन्न करने के लिए आप सबकी अच्छी सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण।